ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் ஆதிகுரு சங்கராச்சாரியா ஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய்.
आपको भोजन में सबसे बढ़िया असना माने भोजन, आपका भोजन, आपको बड़ा प्रिय लगने वाला भोजन असना, आहार, उसके लिए तो समुद्र मंथन करना पड़ेगा, वो हमारी बस की बात नहीं है, है कि नहीं बोलो? समुद्र मंथन किए बिना शिवजी के लिए प्रिय भोजन आप तैयार कर पाओगे? हैं? बड़े खुशी से पान करते हो? हाँ, भगवान शिव बड़े प्रेम से बड़े खुशी से विष पान करते हैं ना, तो समुद्र मंथन से क्या निकला? विष, जहर। अब वो आपको बहुत अच्छा लगता है, और समुद्र मंथन करने की क्षमता मुझ में नहीं है, तो मैं आपकी पूजा कैसे करूं महाराज? देवताओं और असुरों ने जैसे पूजा की, ऐसे पूजा तो मैं तो नहीं कर सकता हूं। जलदि मथन दक्ष नैव, दक्ष माने कुशल, समर्थ। जलदि मथन दक्ष नैव, मैं समर्थ नहीं हूं, मैं असमर्थ हूं समुद्र मंथन करने में, तो आपके लिए भोजन तैयार मैं कैसे करूंगा? और आपकी सपरिया, आपकी पूजा में भोजन पहले चाहिए, भोग लगाना है, और दूसरी है पूजा के अंग में पुष्पहार, फूलों की माला, और आपको सबसे प्रिय मालाओं में सबसे प्रिय है नाग की माला, सर्पमाला, उसके लिए मुझे पाताल में जाना पड़ेगा, क्योंकि नागों का लोक है पाताल, और पाताल भेदन किए बिना नाग लाना संभव नहीं है, पाताल भेदन करने की क्षमता मुझ में जलदि मथन दक्ष नैव पाताल भेदी, न च वन मृगायाम नैव लुब्ध प्रवीण। और बढ़िया वस्त्र की आवश्यकता है, पूजा में वस्त्र उपवस्त्र में समर्पयामि, वस्त्र अर्पण करना पड़ेगा, और आपको वस्त्रों में से दो वस्त्र आपको बड़ा प्रिय है, एक तो दंतित्वक मृग कृत सुंदरांबर धरे, दंती, दंती माने हाथी, दंतित्वक माने हाथी की चमड़ा, हाथी का चमड़ा, और हाथी को मारना कोई साधारण खेल है क्या? वन मृगायाम नैव लुब्ध प्रवीण, लुब्ध माने शिकारी, शिकारी, वन मृग माने बाघ, बाघंबर, बाघंबर चाहिए, मृग चर्म चाहिए, या के और मुझे जंगलों में भटककर इन पशुओं को मारने की क्षमता मुझ में नहीं है, तो मैं आपके लिए कपड़ा लाऊंगा कहां से? बोलो, हाथी मारने की हिम्मत, एक मच्छर मारने की हिम्मत नहीं है मेरी, और हाथी मारकर वस्त्र लाए मैं कहां से लाऊं? बाघ, बाघ का तो नाम सुनते ही हमारा दिल हिलने लगता है, और उसको मार के हम वस्त्र ला पाएंगे? नहीं महाराज। और हमको पता है बम्बई में कपड़ा का मार्केट क्या नाम है मुलची जेठा मार्केट, भुलेश्वर क्या क्या स्वर है, कालवा देवी, चलो वहां का कपड़ा लाकर शिवजी को दोगे क्या खुश होंगे? वो नहीं होंगे, उनको तो बढ़िया हाथी के चमड़ा लाकर दोगे ना, वाह क्या कहना। दंती त्वकृत सुंदरांबर धरे त्रैलोक्य सारे हरे, मोक्षार्थम कुरु चित्त वृत्तिम चलाम अन्यस्तु किम कर्म भी, है ना। एक पुस्तक है, वो आप लोगों की बस की बात नहीं है, सुवासित रत्न भंडागारम, संस्कृत के सुवासित श्लोक है, उसमें 1,00,000 श्लोक, एक नहीं दो नहीं, 1,00,000 श्लोक है वो, सुवासित रत्न भंडागार, वो खजाना ही आगार है, आगार है। ऐसे ऐसे सुवासित श्लोक है उसमें, बड़ा विचित्र, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो प्रसंग। एक समय की बात है, महाप्रलय हो चुका था, भगवान विष्णु पालन करना तो था नहीं, महाप्रलय हो चुका था इसलिए भगवान विष्णु का कोई काम था नहीं, तो विष्णु का उस समय वैकेशन चल रहा था, तो वैकेशन पीरियड में अपने पत्नी के साथ वैकुंठ में, भूदेवी श्रीदेवी के साथ वैकुंठ में बैठे हुए थे, क्योंकि संसार में एक भी प्राणी बचा नहीं था, प्रारब्ध भोगने के लिए एक भी प्राणी था नहीं, सब महाप्रलय में लीन हो गए थे। तो भगवान विष्णु रक्षा करने वाले, पालन करने वाले, पालन करने के लिए कोई प्राणी नहीं था, तो वैकेशन हो गया, छुट्टी। अब क्योंकि संहार हो चुका था इसलिए अब शिव जी को भी काम था नहीं, उनका भी वैकेशन ही चल रहा था, वो तो कैलाश में थे। भगवान विष्णु ने विचार किया कि इस समय छुट्टी का समय है, फुर्सत का समय है, जरा जाते हैं कैलाश में, भोले बाबा से मिल के आ जाते हैं। तो वैकुंठ से वह अपने गरुड़ में चढ़े और कैलाश आ गए। विद्वानों की एक मान्यता है, वो अनभ्यास विषम विद्या, कोई भी विद्या हो वो अभ्यास से ही फलीभूत होता है, यदि तुमने अभ्यास नहीं की तो वह जहर का काम कर जाएगा वो विद्या, अनभ्यास विषम विद्या, अजीर्णे भोजनम विषम, पेट में जाने के बाद वो भोजन परिपक्व हुआ नहीं, पचा नहीं, अजीर्ण हो गया, वो जहर का काम करेगा। वृद्धम सवा दरिद्रस्य, विद्वानों के सभा में कोई दरिद्र पुगा पहुंच गया तो वो, और चौथी लाइन हम नहीं बोलेंगे, वो बोलने लायक नहीं है, वृद्धस्य तरुणी विषम, नीतिकार का वाक्य, ये सुभाषित है। तो इसलिए भगवान इस बात को जानते थे, विद्या का अभ्यास करते रहना चाहिए, महाप्रलय में तांडव नृत्य के बिना जगत का संहार नहीं हो सकता है, और फुर्सत हो गया करके उसका अभ्यास छोड़ना नहीं चाहिए, करते रहना चाहिए। तो भगवान शिव तो अंदर गुफा के अंदर दिगंबर होकर अपने विद्या का अभ्यास कर ही रहे थे, और बाहर दरवाजे में नंदी को रख दिया, बेटा कोई आना नहीं देना, उसी समय में विष्णु आ गए, कहा कि मैं वैकुंठ से विष्णु आया हूं, शिवजी से मिलना है। बोले वो तो विद्या का अभ्यास कर रहे हैं, नाच रहे हैं, तांडव नृत्य का अभ्यास कर रहे हैं। बोले जाकर कह दो ना विष्णु जी हम आए, वैकुंठ से। बोले ठीक है, हम कह देंगे। नंदी ने कहा शिवजी को, महाराज भगवान वैकुंठ से विष्णु आए हैं। तुरंत भगवान शिव ने नाचना बंद कर दिया, अभ्यास बंद कर दिया, और दंती त्वक था वहीं, हाथी की जो चमड़ा था उसको पहाड़ से कमर में लपेट ली, तो एक सर्प को उठाया, उसको बांधा कमर में। आप लोग पॉइंट पहनने के बाद बेल्ट लगाते हो ना, उसको चमड़ी को बांधा और सर्प से कस के रख दिया। और क्योंकि नाचते समय में जटा खोला था, एक सर्प उठाया, आप लोग रबड़ बैंड बांधते हो ना, पहाड़ से उसको सर्प से बांध दिया, और थोड़ा सा राख था वो लपेट लिया, पाउडर लगाते हो ना आप लोग, पूरी मेकअप फटाफट पाउडर लगा लिया, त्रिपुण लगा लिया, और गले में सृगपि निर्करोटी परिकर और सर्प का माला, मनुष्यों के खोपड़ी की माला, फटाफट तैयार करके बाहर निकले। और वहीं पर भगवान विष्णु का जो वाहन गरुड़ था, उसने देख लिया किसको, नागों को, शिवजी के जटा में, गले में, कमर में, जहां भी सब सर्प ही सर्प नागे नाग। जब गरुड़ ने देखा तो सर्पों की तो हवा गुल, डर के मारे कायल हो गए। अब क्या करें, इसने देख लिया, अब तो हमको तो खाएगा, वो जिंदा खाएगा, मार डालेगा। तो गरुड़ ने जब एक सर्प को झपट मारने की कोशिश की, सिर में था जो सर्प, उसने गरुड़ ने झपट मारने से पहले ही यहां जो चंद्रमा लगाया था उस पर फण मार ली, इसने सर्प ने। क्या सोचकर, ये मुझे मारेगा, इसके मारने से पहले मैं अमृत पान करूं तो मैं मर ही नहीं सकता हूं, चंद्रमा तो अमृत, पहाड़ से फण मारा, अमृत पान कर ली। उस झटके से चंद्रमा में से अमृत टपक पड़ा, कहां तो जो माला थी शिवजी के गले में मरे हुए खोपड़ियों का, उसमें पड़ा तो सब जिंदे होकर नाचते हुए हंसते हुए चल पड़े वो, क्यों, अमृत का स्पर्श हो गया। यहां तक तो ठीक था, वो जो अमृत टपक गया कहां कि वो जो हाथी का छाला चमड़ा उसमें गिर गया, एक बूंद यहां से फट गिर गया, तो सर्प तो पहले भाग चुका था गरुड़ से डर के मारे, और वो चंद्रमा का अमृत हाथी के चमड़ी में गिरा तो हाथी तो जिंदा हो गया, वो तो गया घास चरने, भगवान शिव को पता ही नहीं है, पता ही नहीं। दिगंबर आहा गए मस्ती से विष्णु से हाथ मिलाने, महाराज आपने कष्ट किया, हमको ही बुला लिया होता वैकुंठ, आप वहां से यहां आए हैं। भगवान विष्णु मुस्कुरा के हंसने लगे, हे भोले बाबा, ये क्या किया आपने, कम से कम कपड़ा तो पहन लिया होता, ये नंगे धड़ंगे क्या है, इतना भी क्या हतार थी, क्या जल्दीबाजी थी, हम प्रतीक्षा करते कपड़े कपड़े पहन के आते आराम से। बोले नहीं नहीं कपड़ा पहन के आया हूं। अरे देख लो कपड़ा है कि नहीं, देखा तो हाथी तो वहां गया, वहां चल रहा, ये क्या हो गया। तो भगवान शिव को बड़ा लज्जा आई विष्णु के सामने दिगंबर होकर खड़े होने में, और संकोच के मारे गुफा के अंदर फिर भाग गए। तो ऐसे जो भगवान शिव है हम सबका कल्याण करे, कवि ने ऐसा सुवासित कविता लिखी है। भावना ही तो है, बोले है ना वो बेचारा, उनको पता ही नहीं है। जलधि मथन दक्षो नैव पाताल वेदी न च वन मृगायाम नैव लुब्ध प्रवीण असन। भोजन के लिए समुद्र मंथन करना पड़ता है, समुद्र मंथन किए बिना आपके लिए प्रिय भोजन लाना संभव नहीं, समुद्र मंथन हम नहीं कर सकते। और माला के लिए पाताल भेदन करना पड़ेगा, पाताल जाकर नागों को उठाकर लाना पड़ेगा, तभी आपके लिए माला बढ़िया बन सकता है। और पाताल जाने की क्षमता हमारे में नहीं है। वस्त्रक बढ़िया वस्त्र के लिए वन में मृगया शिकार खेलने के लिए जाना पड़ेगा, हाथी को मारना होगा, शेर को मारना होगा, बाघम्बर या दंती त्वक लाना पड़ेगा, तभी आपको वस्त्र का वस्त्र अर्पण कर सकते हैं, वो भी हमारे से संभव नहीं है। कथम सपर्याम विधेयम कथया, आप कहिए कि आपकी पूजा मैं कैसे कर सकता हूं। तो फिर तो क्या कहना चाहता है महाराज? बोले एक काम मैं कर सकता हूं कि मैं अपनी बुद्धि कन्या आपको अर्पण कर सकता हूं और हृदय रूपी घर आपके लिए अर्पण कर सकता हूं, तो आप हृदय रूपी घर में निवास करें और बुद्धि रूपी कन्या से खूब सेवा लें, इसके अलावा और तो मैं कर नहीं सकता हूं महाराज। अब कदाचित आपकी कृपा से पूजा द्रव्य आदि मैं लाऊं भी, तो भी फिर आपकी पूजा मैं करूं कैसे? 86वां श्लोक। पूजा द्रव्य समृद्धयो विरचिता पूजा हम कथम कुर्महे। मान लो कि पूजा के सारे सामग्रियों को मैं विरचित यानी सब तैयार करूं भी, उपलब्ध हों भी, तो मैं पूजा करूं कैसे आपकी? क्योंकि पूजा के लिए सबसे पहले आवाहन करना पड़ता है और आप सब जगह व्यापक हैं, तो आपके आवाहन कैसे करें? आवाहन मंत्रों का कोई प्रयोग ही नहीं है। दूसरी बात, आवाहन के बाद आसनम, तीसरे नंबर में पादयोपाद्यम समर्पयामि, पांव धोना पड़ेगा और पांव आपका पांव कहां है कहां पता ही नहीं है, तो मैं पाद्य बना के रखूं तो भी वह आपका चरण कहां है? पहले चरण का पता तो चले, आज तक आपके चरण कहां है अब किसी को पता ही नहीं। चरण पता लगाने के लिए भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण करके पाताल गए तो भी आपका चरण नहीं मिला, तो उनको चरण नहीं मिला तो फिर मैं आपको चरण में पादयोपाद्यम समर्पयामि कैसे करूंगा? मैं पूजा द्रव्य बना भी लूं तो चरण का पता चले तब न चरण में अर्घ चढ़ाएं पाद्य चढ़ाएं। बोलो कथम कुर्म है पूजाम, आपकी पूजा मैं करूं कैसे? पक्षित्वम च वा कीटित्वम अपि वा। और दूसरी बात, पादयोपाद्यम समर्पयामि हस्तयो अर्घ्यम समर्पयामि, आपका हाथ का पता चले तब न फिर अर्घ चढ़ाए। निर्विशेष का हाथ कहां है और अर्घ कहां चढ़ाए? बोलो। मुखे आचमनीयम समर्पयामि, मुख में आचमनीय जल देना चाहिए, पहले तो सिर का पता चले मुख का पता चले तब ना आचमन अर्पण करें। सिर का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी पक्षी का रूप धारण करके ऊपर गए, ब्रह्मा ने सिर का पता नहीं लगाया, चरण के पता लगाने के लिए विष्णु कीड़ बनकर वराह रूप धारण करके पाताल में गए, चरण का उनको ही पता नहीं चला। पक्षित्वम च वा कीटत्वमपि न प्राप्तम मया दुर्लभम। विष्णु और ब्रह्मा को दुर्लभ हो गया आपका, विष्णु को चरण दुर्लभ हुआ, शिव को मुख दुर्लभ हुआ, तो पाद्य कैसे अर्पण करें, आचमनीयम कहां अर्पण करें बोलो। जाने मस्तक मंग्री पल्लव मुमा जाने, हाँ न जाने, पक्षित्व धारण करके ऊपर जाने पर भी ब्रह्मा जी ने मस्तकम न जाने, और कीटत्व धारण करके विष्णु पाताल में जाने पर भी अंग्री पल्लवम न जाने, चरण का पता नहीं लग पाए। जब उन लोगों को पता नहीं चला तो अहम विभो ते अहम न जाने, तब मैं मुझे कैसे पता चलेगा, मैं कैसे पूजा करूं आपकी। न ज्ञातम ही पिता महे न हरिणा तत्तेन रुतद्रूपिणा। जब उन लोगों के द्वारा ही आपका स्वरूप का पता नहीं चला है, मान लो पाताल से मैं सर्प लाऊं भी तो आपका गला पता चले तब न माला पहनो। मान लो मैं जंगल से हाथी के चमड़ा लाऊं भी तो आपका मध्य देश कटी देश पता चले तो मैं वस्त्र पहनाऊं। मान लो कि मैं गंगा का जल ले आऊं तो आपका चरण का पता चले तो दूं। मान लो कि मैं मलयाचल का चंदन लेके आऊं तो आपका ललाट का पता चले तब चंदन अर्पण करूं, अक्षता अर्पण करूं। निर्गुणस्य कुतो पूजा, निर्गुण निराकार की मैं पूजा करूं कैसे करूं। इसलिए हे महाराज, एक ही चीज मैं कर सकता हूं, मैं अपनी बुद्धि कन्या आपको अर्पण कर देता हूं और हृदय रूपी घर आपको लिए अर्पण कर देता हूं, खाली कर देता हूं। आपको कदाचित लगता है कि वह हृदय छोटा है, इतना साफ सुथरा नहीं है, तो वहां उस हृदय में जो मेरी अनात्मा वासना है, संसार वासना है, वो कचरा है, वो सफाई कर कहोगे तो मैं सफाई कर सकता हूं, साफ सुथरा करके वो कमरा इतना बढ़िया बनाकर रख दूंगा कि आप आओ बैठो और मेरी बुद्धि कन्या को सेवा करने का मौका दो। कल के श्लोक में कहा था कि आप पहाड़ों में विचरण करते हो, यमराज को आपने लात मारी थी तो आपका चरण बहुत दुख रहा होगा, तो मुझे हाथों से संवाहन करने का अवसर दो। अब आप कहते हैं कि चरण का ही पता नहीं है। ले जी, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।